आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 12 अगस्त 2026 के मुख्य समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिकी बलों को चुनौती दी तो उसे उड़ा दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच इस अहम समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ईरान की मांग है कि अमेरिका अपना सैन्य अभियान समाप्त करे और फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज करे। ये टिप्पणियां ऐसे समय आई है जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने संकेत दिया है कि वह और अधिक आक्रामक अभियानों की तैयारी कर रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन से बात करते हुए रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि आदेश मिलने पर गार्ड को कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोलंबिया के राजदूत का कहना है कि सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद अब जीवित बचे लोगों की तलाश पर जोर दिया जा रहा है। इस भूकंप के कारण 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 2000 लोग घायल हुए हैं और लगभग 200 लोग अभी भी लापता हैं। कोलंबिया के राजदूत डिएगो फेलिपे काडेना मोंटेनेग्रो ने SBS स्पेनिश को बताया कि अधिकारी भूकंप में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उन कोलंबियाई लोगों को भी सहायता दी जा रही है जो अपने देश में रह रहे परिवार के सदस्यों को लेकर चिंतित हैं। दूसरी तरफ जापान के रक्षा मंत्री ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आगामी सैन्य अभ्यास से पहले बीजिंग स्थित अपने दूतावास के जरिए उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की है। शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि मिसाइल के करीब 90 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने और लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने का अनुमान है। कोइजुमी ने कहा कि मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्री क्षेत्र में गिरी। उनका कहना है कि इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों का उल्लंघन करता है और जापानी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हमने बीजिंग स्थित अपने दूतावास के माध्यम से इस प्रक्षेपण को लेकर उत्तर कोरिया की कड़ी निंदा की है। वहीं अगर आपने अभी तक जनगणना फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। देश के हर परिवार को कल रात जनगणना का फॉर्म भरना था और 11 अगस्त की रात से जुड़े सवालों के जवाब देने थे। ऑस्ट्रेलिया के लाखों परिवारों ने तय तारीख से पहले ही फॉर्म भर दिया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से सभी लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं। जनगणना का फॉर्म नहीं भरने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अगर आपको कुछ दिन की देरी हुई है तो आप पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी ABS आपसे संपर्क करेगा और जुर्माना लगाने की स्थिति आने से पहले फॉर्म जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि अगर आप लिखित कानूनी निर्देश मिलने के बाद भी फॉर्म भरने से इनकार करते हैं तो आप पर हर दिन $364 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ABS की प्रवक्ता एमिली बॉल्टर ने SBS को बताया कि जनगणना से बड़ी मात्रा में डेटा मिलता है जिससे सरकार को भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। अब खबरें भारत से। भारत सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए 11 नए अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट को मंजूरी दी है। इनमें 9 लैंड पोर्ट और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिससे ई वीजा के जरिए भारत में प्रवेश के विकल्प बढ़कर 88 हो गए हैं। नए पोर्ट में अगरतला, डाउकी, मोरेह, अटारी और जयगांव समेत कई लैंड पोर्ट शामिल हैं, जबकि भोपाल और तिरुपति हवाई अड्डों को भी जोड़ा गया है। अब विदेशी नागरिक 37 हवाई अड्डों, 38 समुद्री बंदरगाहों और 13 लैंड पोर्ट के जरिए ई वीजा पर भारत आ सकेंगे। सरकार के मुताबिक करीब 95% ई वीजा आवेदन 72 घंटे से कम समय में प्रोसेस किए जाते हैं और 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। ई वीजा पर्यटन के अलावा बिजनेस, मेडिकल, स्टूडेंट, ट्रांजिट और अन्य जरूरतों के लिए भी जारी किया जाता है। इसी के साथ 12 अगस्त के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।